मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग दिवस जिंदाबाद। पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाएं। हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट गदर पार्टी की केंद्रीय समिति का आह्वान, 1 मई 2023। मजदूर साथियों, मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग दिवस के अवसर पर कम्युनिस्ट गदर पार्टी सभी देशों के मजदूरों को सलाम करती है। हम उन सभी को सलाम करते हैं जो बड़ी मुश्किल से हासिल किए गए अपने अधिकारों और जायज मांगों पर पूंजीपति वर्ग की सरकारों के क्रूर हमले के खिलाफ लड़ रहे हैं। विश्व पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ही गहरे संकट में फंसी हुई है। 2023 में यूरोप और उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के लिए शून्य वृद्धि का पूर्वानुमान किया जा रहा है। इजारेदार पूंजीपति और उनकी सेवा करने वाली सरकारें आर्थिक संकट के बावजूद अधिकतम मुनाफा हड़पने के उन्माद में एक के बाद एक जनविरोधी कदम उठाती जा रही हैं। वे सामाजिक खर्च में कटौती कर रही हैं, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जन सेवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। सार्वजनिक संसाधनों और आवश्यक सेवाओं को निजी पूंजीवादी कंपनियों के हवाले कर दिया जा रहा है ताकि उन्हें अधिकतम पूंजीवादी मुनाफे के उद्देश्य से चलाया जा सके। ईंधन, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले 2 दशकों में मजदूरों के असली वेतन लगातार गिरते रहे हैं। कई दशकों के संघर्ष से जीते गए अधिकारों जैसे कि पेंशन और तरह तरह की सामाजिक सुरक्षाओं पर तीव्र हमले हो रहे हैं। 8 घंटे काम के दिन के अधिकार का खुलेआम हनन किया जा रहा है। अनेक मजदूरों को 12 से 16 घंटे प्रतिदिन काम करने को मजबूर किया जाता है। मजदूरों की एकता को तोड़ने के लिए पूंजीवादी देशों में हुक्मरान वर्ग जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रवासियों पर हमले आदि के परखे हुए हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश राज्य ने प्रवासी मजदूरों के खिलाफ एक बेहद कठोर कानून पारित किया है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में नस्लवादी हमले फैल रहे हैं। हिंदुस्तान में हुक्मरान वर्ग बड़े सुनियोजित तरीके से धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटता जा रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरी दुनिया पर अपना निरंकुश वर्चस्व जमाने के लिए बेहद हमलावर रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उसने एशिया और अफ्रीका के कई देशों में गृह युद्ध छेड़ दिया है। उसने अपने नाटो सहयोगियों को यूक्रेन पर रूस के साथ लड़ने के लिए लामबंध किया है। इस जंग का उद्देश्य रूस को घेरना और नष्ट करना और जर्मनी को कमज़ोर करना है। अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलीभगत और टकराव दोनों के जरिए वह अफ्रीका को बेरहमी से लूट रहा है। एशिया में अमरीकी साम्राज्यवाद चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ लगातार उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। उसने जापान के सैन्यकरण को प्रोत्साहन दिया है। वह चीन को घेरने और एशिया पर हावी होने के इरादे से एक एशियाई नाटो का निर्माण कर रहा है। संक्षेप में, अमरीकी साम्राज्यवादी मानवता को एक नए विश्व युद्ध में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। हमलावर अमरीकी साम्राज्यवादी अभियान का यूरोप के साथ साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोग भी विरोध कर रहे हैं। कई यूरोपीय देशों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां लोग यह मांग कर रहे हैं कि उनके देश को जंग फरोश नाटो गठबंधन से बाहर निकलना चाहिए। जंग और अपनी रोजी रोटी व अधिकारों पर हमलों के विरोध में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूनान, इटली और यूरोप के अन्य देशों में बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे लोगों में रेल कर्मचारी, विमान कर्मचारी, सड़क परिवहन कर्मचारी, डाक कर्मचारी, डॉक्टर और नर्स, स्कूल शिक्षक, औद्योगिक कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। यूरोप में पिछले 30 वर्षों में हड़तालों में मजदूरों की इतनी बड़ी भागीदारी नहीं देखी गई है। अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देशों में भी बड़े हड़ताल संघर्ष हो रहे हैं। जापानी और दक्षिण कोरियाई मजदूर सैन्यकरण और जंग फरोशी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर में मजदूर अपनी रोजी रोटी और पूंजीवादी सरकारों द्वारा अपने अधिकारों पर किए जा रहे बर्बर हमले का विरोध कर रहे हैं। वे बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वे पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पर की गई कटौती को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे निजीकरण और नौकरियों में कटौती का विरोध कर रहे हैं। वे प्रवासी मजदूरों पर हमला करने वाले नस्लवादी कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मजदूर अपने अधिकारों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष कर रहे हैं। मजदूर उन कानूनों को रद्द करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो अपनी पसंद की यूनियन बनाने के उनके अधिकार पर हमला करते हैं। वे सार्वजनिक संसाधनों और आवश्यक सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे बढ़ती ठेका मजदूरी का विरोध कर रहे हैं। पक्की नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी पेंशन में कटौती का विरोध कर रहे हैं और खाली पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग, आईटी सेवाओं, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में मजदूर छटनी और तालाबंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आंगनवाड़ी और आशा मजदूर सुनिश्चित रोजगार के साथ साथ मजदूर बतौर अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। गिग वर्कर्स मजदूर बतौर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के बैनर तले हुक्मरान पूंजीपति वर्ग हमारे देश को साम्राज्यवादियों द्वारा पूंजी निवेश की पसंदीदा जगह बनाना चाहता है। टाटा, अंबानी, बिड़ला, अडानी और अन्य हिंदुस्तानी इजारेदार पूंजीपति अपने बाजारों और प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच तथा अमेरिका और चीन के बीच के अंतर्विरोध का फायदा उठाना चाहते हैं। हिंदुस्तानी सरकार द्वारा अपनाए जा रहे रास्ते पर चलकर न केवल मजदूरों और किसानों का शोषण तेज हो रहा है, इससे इस इलाके में प्रतिक्रियावादी युद्ध में हिंदुस्तानी लोगों के फंसने का खतरा बढ़ रहा है। मजदूर साथियों, पूंजीवाद समाज को एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत की ओर ले जा रहा है। अपने वर्तमान इजारेदार साम्राज्यवादी चरण में पूंजीवाद का मौलिक कानून देश की बहुसंख्यक आबादी के शोषण, गरीबी और तबाही के जरिए अन्य देशों, खासकर कम विकसित देशों के लोगों की गुलामी और लूट के जरिए जंग तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सैन्यकरण के जरिए अधिकतम पूंजीवादी मुनाफे प्राप्त करना है। पूंजीवाद का एक विकल्प है, वह वैज्ञानिक समाजवाद है। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना पूरी तरह से मुमकिन है जिसमें पूरे समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक जरूरतों की ज़्यादा से ज़्यादा हद तक पूर्ति को सुनिश्चित करना ही अर्थव्यवस्था की दिशा होगी। नवंबर 1917 में रूस में हुई महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के बाद 20वीं सदी में समाजवादी व्यवस्था का जन्म हुआ और कई दशकों तक उसका विकास हुआ। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद नए नए आज़ाद हुए देशों के लोग समाजवादी व्यवस्था से प्रेरित हुए थे, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था ने पूंजीवादी व्यवस्था की तुलना में अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी थी। यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्र और लोग समाजवाद के निर्माण की राह पर चल पड़े थे। अमरीकी सरमाएदारों की अगुवाई में साम्राज्यवादियों ने समाजवाद को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सैनिक तरीके नाकामयाब हुए तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर अपने एजेंटों को पाल पोसकर अंदरूनी विनाश के तरीकों का सहारा लिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्राज्यवादी पूंजीपतियों ने घोषणा कर दी थी कि समाजवाद खत्म हो चुका है और पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इस अमानवीय व्यवस्था का विकल्प तलाशने की लोगों की ख्वाहिश को साम्राज्यवादी नहीं मिटा पाए हैं। पिछले 32 वर्षों में बार बार इस बात की पुष्टि हुई है कि पूंजीवाद मानव जाति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विपत्तियां ही पैदा कर सकता है। मेहनतकश बहुसंख्यकों और शोषक अल्पसंख्यकों की हालतों के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। पूंजीपतियों का जंग रहित दुनिया का वादा झूठा साबित हुआ है। तथा कथित जनकल्याण की सरकारी नीतियों के जरिए पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर मजदूरों की भलाई सुनिश्चित करने की संभावना के बारे में सभी भ्रम चकनाचूर हो गए हैं। दुनिया के मजदूर वर्ग और उत्पीड़ित लोग एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जो कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरों के शोषण से मुक्त हो और कुछ राष्ट्रों द्वारा दूसरों के दमन से मुक्त हो। एक ऐसी दुनिया जो साम्राज्यवादी जंग से मुक्त हो, मजदूर वर्ग को सरमाएदारों के समाज विरोधी हमले के खिलाफ संघर्ष को इसके तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाना होगा। क्रांति के जरिए पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना होगा और समाजवाद का निर्माण करना होगा। यही आज वक्त का बुलावा है। मजदूर साथियों, हिंदुस्तानी पूंजीपति वर्ग और उसकी सभी पार्टियां बार बार हमें कहती रहती हैं कि संसदीय लोकतंत्र की मौजूदा व्यवस्था से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। वे दावा करती हैं कि वर्तमान व्यवस्था सभी वर्गों के लिए हितकारी है। वे इस वास्तविकता को छिपाती हैं कि यह वास्तव में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए सरमाएदार वर्ग मजदूरों और किसानों पर अपनी हुक्मशाही को लागू करता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1951 में यह माना था कि उपनिवेशवादी हुकूमत के खत्म होने के बाद स्थापित किया गया राज्य सरमाएदारों की हुकूमत का राज्य था, परंतु उसके बाद के वर्षों में कम्युनिस्ट आंदोलन उस समझ पर नहीं टिका रहा। कम्युनिस्ट आंदोलन इस भ्रम का शिकार हो गया कि संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए मजदूर वर्ग समाजवाद के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। इससे सरमाएदारों को इस व्यवस्था के बारे में भ्रमों को जीवित रखने में मदद मिली है। वर्तमान संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो इस मौलिक पूर्व धारणा पर आधारित है कि हम मजदूर और किसान खुद अपना शासन करने के काबिल नहीं हैं, इसलिए हमें किसी ऐसी ताकत की ज़रूरत है जो हमसे ऊपर हो और हमारे ऊपर शासन कर रही हो। मौजूदा व्यवस्था हमें फैसले लेने की शक्ति से वंचित करती है। फैसले लेने की शक्ति संसद में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा गठित मंत्रिमंडल के हाथों में केंद्रित है। सरमायेदार वर्ग यह सुनिश्चित करता है कि केवल उन्हीं पार्टियों को सरकार बनाने की इजाज़त दी जाए जो उसके एजेंडे को वफादारी से लागू करेंगी। चुनाव के समय वह ऐसी पार्टियों में से उस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता है जो मेहनतकश जनता को सबसे बेहतरीन तरीके से बेवकूफ़ बना सकती है। सरमायेदारों की हुकूमत को वैधता दिलाने के लिए चुनावों का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लोकतंत्र है। सरमायेदारी लोकतंत्र से बेहतर एक विकल्प है जो श्रमजीवी लोकतंत्र है। श्रमजीवी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम मजदूर और किसान खुद अपना शासन करेंगे। हम उन लोगों का चयन और चुनाव कर पाएंगे जिन पर हमें भरोसा है। हम उन लोगों पर नियंत्रण करने में सक्षम होंगे जिन्हें हम चुनते हैं, और जब भी वे हमारे हितों के खिलाफ काम करते हैं तो उन्हें वापस बुलाने में सक्षम होंगे। हमें यह मांग करनी होगी कि हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर ऐसी व्यवस्था के लिए संघर्ष करना चाहिए। मजदूर साथियों, तमाम तथ्य बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार मजदूरों और किसानों की रोजी रोटी और अधिकारों को कुचलकर हिंदुस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के लालच को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीवन के अनुभव ने यह दिखाया है कि विभिन्न राज्यों में सरकारें चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियां भी पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका एक हालिया उदाहरण कर्नाटक और तमिलनाडु की राज्य विधानसभाओं द्वारा फैक्ट्रियों में काम के दिन की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने के लिए पारित कानून है। जैसे जैसे हम 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हुक्मरान वर्ग अपने प्रचार को तेज कर रहा है। इसका उद्देश्य हमें सरमायेदारों की एक या दूसरी पार्टियों के पीछे लामबंद करना है। हमें इन फरेबी विकल्पों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हिंदुस्तान के नवनिर्माण, जो एकमात्र वास्तविक विकल्प है, के अपने कार्यक्रम के इर्द गिर्द अपनी जुझारू एकता को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा कार्यक्रम मजदूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करना है और पूंजीवादी लालच को पूरा करने के बजाय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था को नया मोड़ देना है। हमारा उद्देश्य जायज है। हम बहुसंख्यक लोगों के हितों के लिए लड़ रहे हैं। हम अवश्य जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।